अब सवाल पैदा होता है कि ये करना तो है, कैसे करना है अपने आप को और अपने बच्चों को। तो इस लेसन को अगर हम बुनियाद बनाकर देख लें तो आप देखिए कि सबसे पहली बात है कि हर एक को आग से बचाने का तरीका फ़र्क होता है। यहाँ अनफुसकुम व अहलीकुम में बच्चे भी आ रहे हैं, तो आपके घर वाले और भी आ रहे हैं, माँ बाप भी आ रहे हैं, उसमें हो सकता है आपके बूढ़े सास ससुर भी हों। तो हर बंदे की तरबियत और तालीम का मुख्तलिफ तरीका होगा। जहाँ तक हमसे बड़े लोग होते हैं, जैसे मतलब बुज़ुर्ग हजरात हैं, हो सकता है हमें अपने वालिद में कोई चीज़ दिखे, हमारी वालदा में हो सकता है गीबत की आदत है, हो सकता है हमारे बाप जो हैं वो कोई ऐसा मशरूब पीते हैं जो ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए माँ बाप के साथ तो तरीका होगा वाज़ो नसीहत का, तस्कीर का, और अदब के साथ उनको मोहब्बत के साथ डील कीजिए। माँ बाप की तरबियत में गुस्सा या डांट डपट नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं और हमें माँ बाप की तरबियत का नहीं कहा गया, बल्कि वो आगे हम पढ़ेंगे इसी सीरीज़ का आखिरी सेशन, बल्कि इस बुक का आखिरी लेक्चर ही माँ बाप के हकूक़ पे होगा, वो वहाँ बात कर लेंगे। या फिर बात बच्चों की है, क्या तरबियत करें बच्चों की? देखिए ज़हनी तरबियत, अखलाकी तरबियत, जिन्सी तरबियत, नफ्सियाती तरबियत और मजहबी तरबियत, ये पांच खाने बना लें। मसलन सबसे पहले मैंने क्या लफ्ज़ बोला? ज़हनी तरबियत। अपने बच्चों को बड़े गोल दीजिए। जब हम अपने बच्चों का जहन सिर्फ वो ट्विंकल ट्विंकल लेटर्स और हंटी हम्टी डम्टी सचिन वाल और छोटी छोटी बातें और मेरा गुगलू मेरा बब्बू क्या खाओगे क्या पियोगे, तो ज़हनी तरबियत नहीं होती। पहली माएँ दूध के असर के साथ ही बच्चों को जो लोरियाँ सुनाती थी ना, उसमें इस्लाम के लिए लड़ना, जिहाद, इस्लाम का दिफा और मुजाहिदीन के किस्से और सहाबा की स्टोरीज, ये ज़हनी तरबियत होती है। अपने बच्चे को बड़ा गोल दें, उसको इमाम सुदैस के मिसालें दें, आप उनको किसी बहुत मारूफ शख्सियत का नाम बताओ, बेटा तूने ये बनना है, यानी ज़हनी तरबियत, समझ रहे कि उसका जहन बड़े कामों पर लाइए, मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा। आपको तो अबू जहल को जिन दो बच्चों ने मारा था वो कौन थे? यंग थे। क्यों थे? क्योंकि माँ ने कहानियाँ सुनाई। अब आप क्या करें, बच्चों को क्या सुनाएं? इसमें फिर अमल की बातें। देखिए लड़कों को हमेशा बहादुरी अच्छी लगती है ना, ब्रेव होते हैं। आप हजरत अली की कहानियाँ सुनाइए, खालिद बिन वलीद के किस्से सुनाइए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बेटियां हैं तो आप उनको अजवाज की शर्मो हया की सुनाइए। नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त उनको मरने मरने की बातें करें, उनके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करें, बच्चों को मज़ा आएगा। ये नहीं कि हर वक्त कहते रहे आग से बचो, जहन्नुम से, नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रखो, नहीं। आप उनके मॉडल्स चेंज कीजिए, उनका जहन ऊंचा करें, फालतू उनको फारिग ना रहने दें। फिर आप देखिए कि ज़हनी तरबियत के अंदर ये आता है कि आप उनके अंदर ऐसी चीज़ें डालें कि जिससे वो शुरू से ही वो कुछ करना चाहें। जैसे मैं अभी इनको कह रही थी ना कि आप खुद ही आहिस्ता बोल रही हैं तो ये सारे भी आहिस्ते बोलेंगे, आप खुद ढीली ढीली बात कर रही हैं, खड़े हो जाएं तो वो खड़े ही होंगे ना, तो आप के खड़े हो जाएं तो खड़े होंगे, फ़र्क होता है टोन में। तो बच्चों की ज़हनी तरबियत। दूसरी कौन सी बोली है? अखलाकी तरबियत। अखलाकी तरबियत सबसे अहम है। अखलाक में सबसे बड़ी बात सच, झूठ नहीं बोलना। मेरा बच्चा गीबत नहीं करेगा, ताना नहीं देगा, किसी की बातें इधर से आके नहीं सुनाएगा। बच्चों की अक्सर आदत होती कहीं से होकर आए आके शिकायतें लगाते हैं और कुछ ना समझ माए, दादी क्या कर रही थी, फूफो किधर थी, और वो आंटी क्या कर रही थी, और फ़ोन पे किससे बातें कर रही थी। आप अपने बच्चे का कत्ल कर रही हैं। इतनी कंसुइयों और इतनी बातें नोट करने की आदत हो जाएगी कि वो चलते फिरते जासूस होंगे। और कई लोग कहते हैं कि जो बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम में अमूमन हमारे मुल्कों में पलते हैं वो अपनी उम्र से 4 साल 5 साल बड़े होते हैं, पक्के पीढ़े। उनको पता है मामा दादी आ रही हैं, बस मामा आप चुप कर दो, बाबा आ गए हैं। हाँ, अब ये क्या कर रहे हैं आप? आप उनके अखलाक बिगाड़ रहे हैं। फिर अखलाक की तरबियत में ऊंची नहीं बोलना, चीख के नहीं बोलना, दूर से खड़े होकर नहीं कहना अम्मा मैं आ गया, अम्मा इधर आओ, करीब आओ, को अम्मा ये दे दो, माँ ये दे दो। बाप बच्चे देखिए लड़ते भी हैं जो अच्छा लगता है। एक ख़ास हद तक फिज़िकल मूवमेंट्स बच्चों में, आपस में भाई बहन हैं, ऊंचे मूंचे कर, इट्स गुड। बट जहां बदतमीजी देखें, भाई ने भाई से की है, बहन ने भाई से, भाई ने बहन से, या आपसे या आपके मियाँ से, वो नहीं बर्दाश्त करनी। बेटा आप बैठो इधर, 10 बातें सोच, प्यार करें, मुंह चूमें, हाथ चूमें, बट आई विल नॉट टॉलरेट दिस, नेक्स्ट टाइम ये नहीं तुम करोगे। और यकीन करें कि ये चीज़ फिर बूढ़े होने तक जाती है। और मैंने कई लोगों से ये चीज़ें सीखी हैं। वो कहते हैं हमारी माँ ने हम पे सबसे बड़ा एहसान ये किया कि पहली दफ़ा जब झूठ बोलने की कोशिश की तो माँ ने रोक लिया। आज के बाद झूठ ना बोलना, सच बोल दो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर झूठ बोला है अगर ये मुझे पता चल गया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। और पहली माएँ झूठ नहीं थी बर्दाश्त करती। फिर इसी तरह अखलाकी तरबियत में आपको पता ही है, उठना है, बैठना है और स्माइली फेस होना है, बड़ों की खिदमत है। घर में बुजुर्ग हैं कोई, आप उनके पास अपने बच्चों को बिठाइए, आप बेटा बैठो, दादी के पाँव दबाओ, दादा के जूते रखो, अब्बू आए उनके हाथ से बैग ले लो। ये छोटी छोटी चीज़ें दुआएं लेने देने की होती हैं। बच्चियां पहले आप देखिए बाप का रास्ता देख रही होती थी, अब्बा के आते ही जल्दी से उनके आगे छोटे छोटे हाथों से जूतियां रखती हैं, कभी उनके पानी देती हैं, कितना प्यार लेती हैं। अब होश ही नहीं होती अब्बा नाम की भी कोई चीज़ घर में है, और अब्बा जी घर में है, कर्फ्यू लग जाता था। आप जानते हैं, आप उसी कल्चर से आए हैं जहाँ से मैं आई हूँ। बाप का घर में होना और ना होना फ़र्क लाता था, वल्लाह ही फ़र्क लाता था। और बाप के ऊपर अगर दादा या ससुर आ गए तो फिर तो और भी खून खुश्क होते। मैं नहीं कहती कि बाप खून खुश्क कराएं, लेकिन बच्चों को तमीज़ होनी चाहिए, और ये तमीज़ माँ सिखाती है। और जो माँ खुद बाप की बुराइयाँ करेगी तो बच्चे क्या करेंगे। और फिर बाप का भी फ़र्ज़ है कि वो बीवी की इज्जत कराए बच्चों से। हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अपनी माँ के नाक और आंसू पोंछ पोंछ के टिश्यू पेपर से अपने बच्चों को दिखाते थे, और उनके बच्चे बताते हैं कि हमने अपने बाप को अपनी माँ के सामने ऐसे बैठे देखा है जो कुरान कहता है, वक्फिज लहुमा जनाह जुल्ली मिन रहमा वको रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वो बच्चे कहते हैं कि हमें अब्बू का दादी के साथ का अमल याद आ जाता है जब अब हम अपनी माँ के साथ हैं। और बीवी को इजाज़त नहीं थी बात का जवाब देने की अगर बच्चा चीख के बोला, यानी बच्चे चीखते हैं माँ से, तो बाप आके बच्चों को कहते हैं बेटा मामा से ऐसे नहीं बोलते, सॉरी बोलो, अगली दफ़ा बच्चा नहीं बोलेगा। हम चूँकि मसरूफ़ बड़े हैं, हम खाने पका रहे हैं, हमने शॉपिंग करनी है, बच्चों को हम इग्नोर करते हैं। सबसे कीमती चीज़ आपकी बच्चे है, आप खाना नहीं पकाते कोई बात नहीं, चटनी रोटी से खा लें, बच्चे को इग्नोर ना करें। आप कितने क्वालिटी टाइम दे देते हैं ना, दिन में 15 मिनट नहीं, पूरा वक्त। ये नहीं क्या बैठ के आधा घंटा लेक्चर दे दे, कई लोग कहते हैं अच्छा जी 15 मिनट का लेक्चर बच्चों को रोज़ दें, लेक्चरों से बच्चे नहीं सीखते, सॉरी। बच्चे डे टू डे मिसालों से, ज़िंदगी की बातों से, छोटे छोटे कामों से सीखते हैं। फिर अगली तरबियत क्या थी, जिंसी तरबियत। आप देखिए कि आज के दौर में ये जिंस और सेक्स के लफ्ज़ ने भी नस्लों को घुन लगा दिया है। 10-12 साल के बच्ची बच्चे में वो जज्बात आ चुके होते हैं जो पहले शायद शादी होने तक भी नहीं पता होता था क्या है। आप उनका जहन क्लियर करें। इकट्ठे दो बच्चों को सुलाना एक बिस्तर में मना है, एक क्विल्ट के अंदर दो भाई भी नहीं सो सकते 7-8 साल की उम्र में, भाई बहन का तो तसव्वुर ही नहीं है, और बहन बहन भी नहीं है। फिर मैं बिस्तर अलग कर दो 7 साल का होने पे, और उनको नमाज का हुक्म दो। फिर आप देखिए घर में कोई ऐसी चीज़ जिससे जिनसी जज्बात उभरते हैं, गाने हैं, डायलॉग हैं, फिल्में हैं, इससे अवॉइड करें, वरना बच्चों में गैर महसूस तरीके से ये चीज़ें आती। फिर आप देखिए शादियाँ, अब आप इमेजिनेशन में लाएं, देखिए मैं सिर्फ एक फीस माना बात करती हूँ, हमेशा तो शादियाँ नहीं होती, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो हर जुम्मा भी आप शादी पर जा सकते हैं। अब जवान बच्ची आपकी चले महीने में एक दफ़ा भी शादी में गई, तैयार होगी, अच्छा जोड़ा पहनेगी, जो भी आपने उसको कीमती कपड़े ले दे के दिए, और वो 2-4 घंटे लगा के मेकअप करेगी ना, क्या ख्याल है वो वहाँ 4-6 घंटे में इतना सिनेरियो देख कर घर आएगी तो ऐसी ही आ जाएगी। आप एक फिल्म देखें उसका असर रहता है दिमाग पे। आप एक शादी से होकर आए 2-4 दिन तो दिल में आपके कई किस्म के ख्याल आते हैं ना। अब जब ये रूटीन बनेगी तो फिर वो जज्बात का एक्सपोजर किधर है, वो तो है कोई नहीं है। लिहाजा ऐसी ज़्यादा सोशलाइजिंग गेट टुगेदर कि जहाँ जाकर जज्बे उभरते हैं ये भी मना है। फिर आप देखिए कि जिनसी तरबियत में तो बहुत कुछ है, अभी मैंने इसी रमज़ान के लेक्चर्स में एक शाम किया था बच्चों की जिनसी तरबियत कैसे की जाए, या हम कहीं गए थे पेरिस में ही, तो वहाँ मैंने उसी पे एक टिप सारी बताई थी, ख़ास तौर पे उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें थी क्योंकि आज के दौर में ये एक बिग इशू है। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग है नफ्सियाती तौर पर बच्चों में एहसास कमतरी ना लाएँ, बच्चों को हर वक्त रोक टोक ना रखें, बच्चे को ओए तोए ना करें, तू निकम्मा, तू पागल, और तू होशियार और तू चालाक, ये जुमले ना बोलें। अपने बच्चे को आप किस टोन से बुलाते हैं, इधर आ, इधर आ, खा ले, चल जा, ये टोन नहीं अच्छी होती। बच्चे को ऐसे बुलाएं जैसे आप अपनी बेस्ट फ्रेंड, बेटी है ना, उसको ऐसे बुलाएं जैसे बेस्ट फ्रेंड को बुलाती हैं, और आप अपने बेटे को ऐसे बुलाइए जैसे आप चाहते हैं कि कल वो आपसे बात करें। आपका दिल चाहता है ना बेटा गले में बाहें डाले, आपका मुंह चूमे, आपको प्यार करे, इस तरह बुलाइए। मेरा बच्चा उठाए हैं तो सुबह उंगलियां फेर के कान बालों में उठाएं, हम तो जिस टोन से उठाते हैं अल्लाह की बना, वो कहते हैं अब जल तू जलाल तू आई बला टाल तू। और कहते फिर उठते नहीं नमाज पे। मसलन नमाज पे कैसे उठाए, बेटा उठो नमाज पढ़ लो, पहली दफा दो उठो, फिर तीसरे उठते नहीं, जहन्नमी काफिर। आप वो डुब के रहेंगे, अम्मा जाके सोएगी फिर उठूंगा। मैंने आपको दारे कुरान में मिसाल दी थी, याद है किसी को? आप एक दफ़ा एक जुमला अपना रिकॉर्ड करें, बेटा उठिए नमाज पढ़िए। अब आप इसको कॉपी एंड पेस्ट करके 10 दफ़ा इसी को रिवाइंड कर करके सुने, तो वो टेप एक ही तरह बोलती है ना। ये तो नहीं पहली दफ़ा प्यार से बोले, दूसरी दफ़ा और गुस्से, और चौथी दफ़ा वो चीखने लगे। एक रिकॉर्डिंग की तरह बोले, इस तरह बोले कि बच्चे को मज़ा आए, सारी ज़िंदगी याद रहेगा। नमाज के साथ उनको आपका गुस्सा याद आ जाएगा। एक अजान मौलवी साहब देते हैं और एक अम्मा जी देती हैं। मौलवी साहब की अजान पे तो कोई उठता नहीं जब तक अम्मा जी उठ के ना अजान दें, और फिर जब माँ जी की टोन इतनी सख्त होगी तो बच्चों को नमाज से चिढ़ हो जाएगी। बहुत मुश्किल टॉपिक है रियली। जिनको अल्लाह ने इस आजमाइश में डाला, मेरी बड़ी दुआएं उनके लिए, और जिनको नहीं डाला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जान बची सो लाखों पाया। लेकिन इसके लिए शऊर की ज़रूरत होती है, इसके लिए एहतियात की ज़रूरत होती है, वरना याद रखिए आपके बच्चे आपकी आंखों की ठंडक नहीं रहेंगे। और कोई चाहता है कि आग लगे? आप देखिए नेबर में आग लगी हो, इसको फिर देखिए, आग लगी हम साए में तो आपका घर महफूज रहेगा? फौरन आग आपकी तरफ आएगी। अगर बाहर वाली आग ना बुझाई मैंने, आपने तो अंदर की नहीं बुझेगी। तो ये जो दावत इल्लाह का काम है, लोगों को अल्लाह से जोड़ना, ये बाहर की आग बुझाना है। हम चाहते हैं हमारे बच्चों के दोस्त भी अच्छे हो जाएं, हम चाहते हैं सोसाइटी अच्छी हो जाए। अकेले में तो आप अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सकती, तो फिर मुआशरों से बुराइयाँ ख़त्म करना और नेकियों को बढ़ाने का कोशिश करना। आप कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी की बेस पे जो कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो कू अनफुसकुम वअहलीकुम नारा के लोगों को कुरान पढ़ाएं, लोगों को इस्लाम सिखाएं। ये है जहन्नुम की आग बुझाने का तरीका। सोशल वर्क करना चाहते हैं, जहन्नुम की आग बुझाइए लोगों की। आप देखिए कहीं आग लगी हो, फौरन फायर ब्रिगेड को बुला लेंगे। नेबर में आग लगी है तो सोए रहेंगे? नहीं, आप तो फौरन कॉल करेंगे 911 को, आइए जी आग लगी हुई है। तो जब आप और मैं दुनिया से बुराइयां मिटाने की कोशिश करते हैं ना, ये भी एक बड़ी अहम बात है। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं नहीं, हमारे बच्चे, हमने उनको टाइम देना, इसलिए हम आपके साथ ये कुरान पढ़ना पढ़ाना नहीं कर सकते। मुझे उससे ज़्यादा ना समझ कोई उज़र ही नहीं लगा आज तक। नहीं भी बच्चे घर में होते हैं ना, तो हम फिर ऐसे हैं, फिर हम तो वैसे हैं। ख़ास तौर पर ये इशू उनका होता है जो सिस्टर्स पढ़ने पढ़ाने लग जाती हैं, क्योंकि भी घर वालों ने भी ये ताने देना है, तुम तो अब घर में टिकती नहीं हो, बच्चों को कौन देखेगा, और तुम तो ये और तुम तो वो। देखिए एक घुटने पे एक बच्चा और दूसरे पे दूसरा बच्चा बैठा हो, इस तरीके की उनकी तरबियत करें। अगर आप बच्चे को एक हफ्ता टैकल कर लेते हैं, पूरी इजाज़त है बच्चे अंदर बैठ सकते हैं। मसला कब होता है? जब हम फौरन घबरा, नहीं मैं आई थी मेरा बच्चा रोया फिर मैं नहीं अब आऊँगी, तो फिर ये रोएगा तो अब आप कभी कोई काम नहीं करेंगी। ये सिखाने वाले काम है, श करेंगे बच्चा भी शूं करेगा, और आप चीखेंगे बच्चा भी चीखेगा। तो आप देखिए जब बच्चों को साथ लेके चलेंगे तो मसला ही कोई नहीं। मैं तो कहती हूँ कभी बच्चों को घरों में ना छोड़िए। आपके बच्चे आपके साथ, ये कैसे हो सकता है आप अपने बच्चों को छोड़ के घरों में दीन ले आए? आप कहते हैं बच्चों को पढ़ाने जाते हैं इसलिए ये होता है, बच्चों के साथ मामला करते हैं ये होता है। आपके बच्चे आपका एक गोल बन जाए, आसान ज़िंदगी का नुस्खा, कू अनफुसकुम वअहलीकुम का आसान नुस्खा, जो आपकी कॉज है वो शोहर की कॉज हो जाए, तो शोहर बीवी खुश हैं। जिधर आप जा रही हैं उधर वो जा रहे हैं, वो भी रोज़ सुबह उठ के पूछते हैं आज आप किधर जाएंगी, आज क्या होगा, आज क्या होगा। फिर बच्चा होता है कि वो कहेगा अम्मी अबू दोनों का एक ही फील्ड है, तो उसका भी वही है। छोटे होने से वो देख रहा है अब्बू 5 दफ़ा मस्जिद में जाते हैं, अम्मी दिन में 2 बार पढ़ने पढ़ाने जाती हैं, उसको बुरा ही नहीं लगेगा। मसला ये हमारी दो धारी तलवार है, ये मसला है, इसको रोकने की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें इस चीज़ का एहसास दिला दे कि ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। आखिरी रिलीजियस बोली थी मैंने तरबियत, रिलीजियस तरबियत में फिर आता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। हम सिर्फ रिलीजियस तरबियत को इस्लाम समझते हैं, हालांकि अखलाकियात सिखाने, आप नीचे टीचर्स को पूछ लीजिए जो इस वक्त भी आपके बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैंने जब भी आपके बच्चों की टीचर से बात की, मैंने उनको यही कहा है कि आप कुछ भी पढ़ाएं, यानी सिलेबस वाइज आपकी बुक्स, आपकी वर्क बुक्स जो भी हैं, बट बच्चों को मैनर सिखाने, बच्चों को माँ बाप के साथ प्यार सिखाना है, आहिस्ता बोलना सिखाना है, दरवाज़ा कैसे खोलते हैं भागते का, यानी एटिकेट सिखाएं। क्योंकि हमारा दीन, दीन कौन सा है? मैनर्स का दीन है। तो इंशाल्लाह हमारे दीन में तो ये सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए इस काम को आसान कर दे। अब एक आयत के बाद अगली आयत में सारा कुछ छुपा हुआ है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना कफरू, पीछे से ज़रा देखिए इसको जोड़ें, वहाँ क्या था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब उसका ऑपोजिट है, इसको भी ज़रा रिलेट कीजिएगा, या अय्युल्लज़ीना कफरू, ए कुफार, ए वो लोगो जो काफिर हो, ला तअ्तज़िरुल यौम, आज माजरतें पेश ना करो। यानी इसमें हर वो शख्स आ सकता है जिसने ईमान के तकाजे पूरे नहीं किए, उसको कहा जा रहा है अब अपनी नाशुक्री और नाफरमानी की वजह से उज़र पेश ना करो। क्योंकि होता भी यही है, जब हमें ईमान की कोई कॉल आती है ना, तो हम उस कॉल पे लब्बैक नहीं कहते और बाद में फिर बहाने करते हैं, उज़र करते हैं, कहा इन्नमा तुज़ौनमा कुन्तुम तामलून, तुम्हें तो वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे थे। यानी सच्ची बताऊँ, पिछली आयत में आमनू के बाद जहाँ कफरू को अगर मैं ये कह दूँ ना, हम तो कहते हैं शायद ये डिसबिलीवर्स की बात है, नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान के तकाजे ही नहीं पूरे किए, जिन्होंने ना खुद को आग से बचाया ना बच्चों को, तो अब जाके उज़र तो बड़े पेश करते हैं बाद में लोग। यानी अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं तुम आज हमें ना कुछ को, ये तुम्हारी अपनी की हुई सज़ा है। देखिए, किसान जिस चीज़ का बीज डालता है उसी की फसल निकलती है, जो किसान बीज सही नहीं डाल रहा उसकी फसल अच्छी नहीं। आपकी मेरी औलाद, आपका मेरा, घर वालों से मामला, ये बीज डालने का मामला है, आज डाला नहीं कल काटेंगे कैसे, तो गिला किस बात का, जो किया तुम्हें मिल गया। अब ये सुन के आता है कि हाय हमसे बड़ी कमी कोताही हो गई, होती है। कई लोग कहते हैं हाय कभी पहले कुरान पढ़ा होता तो हमारे बच्चे ना बिगड़ते, तरबियत अच्छी होती। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अल्लाह ताला कहता है रास्ता अभी भी खुला है। कैसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से तौबा करो, खालिस तौबा, पक्की तौबा। असा रब्बुकुम, बईत नहीं कि अल्लाह तुम्हारा, यानी तुम्हारा रब क्या करे, तुम्हारे साथ क्या मामला करे तुम्हारा रब, युकफ़िरानकुम सय्यातिकुम, दूर कर दे तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ, व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, और तुमको दाखिल कर दे उन जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और साथ ही बताया कि यौम ला युख्ज़िल्लाहुन्नबी वल्लज़ीना आमनू माहू, ये वो दिन होगा जब अल्लाह अपने नबी को और इन लोगों को जो इसके साथ ईमान लाए रुसवा ना करेगा। और उसके अलावा क्या होगा, नूरहुम यस्सा बैना अईदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर इनके दाएं और इनके आगे भाग रहा होगा, यानी इनके आगे आगे और इनकी दाईं तरफ इनका नूर दौड़ रहा होगा। और इनकी दुआ क्या होगी, यकूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, वो कहेंगे हमारे रब पूरा कर दे हमारे लिए हमारा नूर, यानी हमारा नूर पूरा कर दे और हमें माफ़ कर दे, हमसे दरगुजर फरमा, इन्नका अला कुल्ली शयइन क़दीर, बेशक तू हर चीज़ पे कादिर है। अब देखिए, इस एक आयत में आखरत का मंजर पेश किया जा रहा है। वो लोग जो दुनिया में ईमान के तकाजे पूरे नहीं कर पाए, आज एहसास हो गया पक्की सच्ची तौबा की। इसके लिए लफ्ज़ आया यहाँ तौबतुन नसूखा, समझ लीजिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। उर्दू में आपने एक लफ्ज़ सुना है, नसीहत, नासे, वही लफ्ज़ है ये भी। नुस्खुन के मानी होते हैं खुलूस और खैर ख्वाही के। जब आप कहते हैं ना मैं आपको नसीहत करती हूँ, तो क्या मतलब कि मैं आपकी मुखलिस हूँ, मैं आपकी खैर ख्वाह। खालिस शहद को अरबी में असले नासिख कहते हैं, जिसको मोम और दूसरी आलाइशों से पाक किया जाता है। इसी तरह कपड़ा फट गया, पहले दौर में ऐसा होता था कपड़ा फटता था, फिर उधर से थोड़ा सा टुकड़ा उतर गया ना, तो ऊपर आप एक और कपड़ा रखते थे और उसको चारों तरफ से हैम करते थे। इसको क्या बोलते हैं, पैवंदकारी। नसूख का लफ्ज़ अरबी में नसाहत सौब आता है, उधड़े कपड़े की मरम्मत करना। और जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ मुझे लगता है गुनाहों के तेजाब से तुम्हारी रूह के ऊपर से धजियाँ उड़ गईं। तौबा का फाहा लगा के इसको सीधो, मेकअप करो इसको, ख़राब चीज़ को सही कर लो। तो तौबत नसूख कहते हैं सच्ची तौबा, खालिस तौबा, जिसमें रिया ना हो, निफाक का शायबा ना हो, और बंदा खुद अपने साथ खैर ख्वाही करे, गुनाहों से तौबा करके अपने आप को बुरे अंजाम से बचा ले, गुनाह के असर से दीन में जो शिगाफ पड़ गया है उसको फिलअप कर दे, इतनी खूबसूरत अगली ज़िंदगी कर ले कि पिछली ज़िंदगी की कोई परछाइयाँ भी लोगों को याद ना रहे, और उसका अपना वजूद लोगों के लिए नसीहत का सबब हो कि देखो ये कल क्या थी आज क्या बन गई। और तौबत नसुहा क्या है कि बंदा ऐसी मिसाल बने कि उसको देख कर ही दूसरे अपनी इसलाह कर लें। ये हैं तौबत नसुहा के मानी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपको मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे। उबई बिन काब से तौबत नसुहा का मतलब पूछा गया। कहते हैं मैंने भी रसूलुल्लाह से यही सवाल किया था, तो आपने फरमाया तौबत नसुहा से क्या मुराद है? जब तुमसे कोई कसूर हो तो अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो जाओ, फिर शर्मिंदगी के साथ इस पर अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर लो, आइंदा कभी इस फेल का इर्तिकाब ना करो। यानी ये है तौबत नसुहा, और यही बात हज़रत उमर इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास से भी मिलती है। हत्ता कि हज़रत उमर कहते हैं कि तौबत नसुहा क्या है कि तौबा के बाद आदमी गुनाह को दोहराना तो दूर की बात, इसके करने का इरादा तक ना करें। ये इब्ने जरीर की रिवायत है। बात समझ गए? हम कितनी बार तौबा करते हैं? हर रमज़ान में करते हैं, हर उम्रे से वापस आके करते हैं, और हमेशा जब अल्लाह ने मौका दिया हज पे जाकर तौबे करके आते हैं, या फिर कोई मरता है जीता है, कोई गम सदमा आता है तौबा करते हैं, या बीमार होते हैं तौबा करते हैं, उसके बाद दोबारा फिर वैसे के वैसे, तो वो तौबा तो नसुखा नहीं है। हज़रत अली ने एक बद्दू को जल्दी जल्दी कहते देखा, तौबा तौबा सख्त तौबा सख्त, तो कहने लगे हाज़ा तौबतुल कज़्ज़ाबीन, ये झूठों की तौबा है। कहने लगा अच्छा तौबतुल कज़्ज़ाबीन है, तो फिर सच्ची तौबा क्या है? तो कहने लगे उसमें छः चीज़ें होनी चाहिए, आप भी लिख लें। नंबर एक, जो हो चुका उस पर शर्मिंदगी, नादिम। दूसरी बात, जिन फ़राइज़ से गफलत बरती उसको अदा कीजिए, यानी रोज़े छूटे उसको अदा कीजिए। तीसरी बात, जिसका हक मारा हो उसको वापस कीजिए। अब ये नहीं कि चोरी से तौबा कर ली और वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, वापस कीजिए जिनकी थी। चौथी बात, जिसको तकलीफ़ पहुंचाई हो उससे माफ़ी मांगे। और पांचवी, आइंदा के लिए अज़म कर लें कि इस गुनाह को दोहराऊंगी नहीं। और छठी बात, अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत में ऐसे घुला दें जैसे अब तक इसको नाफरमानी का आदी बनाया था, और अब इसको इताअत की तलखी का मज़ा चखाना है जैसे गुनाहों की मिठास के मज़े चखाते थे। अब सवाल पैदा होता है तौबा की बात में, चंद बातें और समझ लीजिए। पहली बात है कि तौबा नाफरमानी पर शर्मिंदा इसलिए होना कि ये अल्लाह की नाफरमानी है। मसलन शराब पीता था, सेहत ख़राब हो गई, शराब छोड़ दी, ये तौबा नहीं है। अब आप देखिए कि शराब छोड़ी बीमारी के डर से, ये तौबा नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी के डर से छोड़नी है। चोर चोरी करता है क्योंकि अब हिम्मत ही नहीं रही, ये तौबा नहीं है। तौबा क्या है कि बदनामी के नहीं, माली नुकसान के नहीं, अल्लाह की नाफरमानी के डर से किसी गुनाह को छोड़ना है। पहले गाने सुनते थे, अब बूढ़े हो गए, अब जज्बाती मर गए, गाने छोड़ दिए, ये तौबा नहीं है। तौबा क्या है? अल्लाह की नाफरमानी से गलत चीज़ों को छोड़ना है। फिर इसी तरह देखिए, बार बार तौबा करना और तोड़ना ये भी खेल है। इससे फिर बंदे का एतबार हट जाता है और उसके अंदर वो चीज़ नहीं रहती। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे आपको तौबा की तौफीक दे। और ये जिन जन्नतों की बात है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, याद रखिए 4 दिन की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने के लिए इस जन्नत को छोड़ देना, ये चीज़ आपके मेरे लिए बड़े ही नुकसान की है। क्योंकि देखिए अल्लाह ने कितनी खूबसूरतियाँ बताई हैं ना, वो जन्नतें जिनमें नहरें बहती होंगी, फिर अल्लाह ईमान वालों को रुसवा नहीं करेगा, ये भी बात देखे। दुनिया में अमूमन जब आप दूसरों की इसलाह की कोशिश करते हैं ना, तो लोगों को बुरा लगता है। सादिक और अमीन का लकब काजिब और काहिन में बदल जाता है, लेकिन कहा ला युख्ज़िल्लाहु नबिया, क़यामत के दिन अल्लाह नबी को रुसवा नहीं करेगा। यानी अगर थोड़ा बहुत दुनिया में आपको तकलीफ़ सहनी भी पड़ी तो अल्लाह ताला उसको बचाएगा। और ये जो नूर की बातें इधर है ना, ये पुल सरात है, इसके ऊपर सूरह हदीद में बड़ी खूबसूरत तरीके से, इससे भी ज़्यादा वाज़े आयते हैं। बस ये दुआ कीजिए कि दुनिया में हमारी नेकियों का नूर फैल जाए, कुरान का नूर हमारे ज़रिए से फैल जाए, वहाँ तक हमारी नेकियाँ पहुँचेंगी। और हदीस में आता है कि जहाँ तक मोमिन की नेकियों का असर गया होगा, वहाँ तक उसका क़यामत के दिन नूर होगा। कुछ का तो मदीना से लेकर दूर शहर तक होगा, यमन और अदन और मुख्तलिफ़ जगहों तक है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपको मुझे इस चीज़ के साथ अल्लाह काबिल कर दे। फिर आखिरी आयतों में, हमारा मौजू ये नहीं क्योंकि हमारा इस वक्त पढ़ने का टॉपिक का मकसद घर बचाओ था, लेकिन आयतों को पूरा करने की हद तक अगले हिस्से को पढ़ लेते हैं। या युहन नबी यु जाहिदिल कुफ़ार अवल मुनाफिकीन वाग़लुस अलैहिम वमा वाहुम जहन्नम वबीसल मसीर। ऐ नबी, कुफार और मुनाफिकीन से जिहाद करो और इनके साथ सख्ती से पेश आओ। इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। क्योंकि असल में दुनिया में ईमान और कुफर की आंख मचोली है ना। और इन आयत की तफसीर सुनना चाहें तो आप सबीलुल जन्ना या नूरुल कुरान या जो भी डिफरेंट सेट्स हैं तफसीर के, उसमें सुन सकते हैं। यहाँ इससे मुराद क्या है कि अगर आपने मैंने अपनी और अपनी औलादों की इस्लाह करनी है तो हमें बाहर की सोसाइटी से भी कुफर को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए अमली कोशिशें करें। फिर आगे चार खवातीन की मिसाल है, दो ईमान वालियाँ और दो दूसरी। आइए देखते हैं। दरबल्लाहु मसला लिल्लज़ीन कफरू इमरात नूह व इमरात लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानताहुमा फलम युग्निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैया। अल्लाह काफ़रों के मामले में नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करता है। वो हमारे दो सालेह बंदों की ज़ौजियत में थी, मगर उन्होंने अपने इन शोहरों से ख़यानत की और वो अल्लाह के मुकाबले में इनके कुछ भी काम ना आए। वकील अदखुला, कहा गया दोनों को, क्या दाखिल हो जाओ, अन्नार मद दाखिलीन, आग में दाखिल होने वालों के साथ। दो खवातीन जो दो नबियों की बीवियां थीं, लेकिन नबियों के मिशन के साथ संजीदा नहीं थी। अल्लाह ने उनको शोहर की ज़ौजियत से फ़ायदा नहीं दिया और वो आग में चली गई। क्या पता चला, हमारे शोहर कितने ही नेक क्यों ना हो जाएं, हमें ख़ुद भी नेक होना पड़ेगा। हदीस में आता है, जिसके अमल ने उसको पीछे छोड़ा उसका नसब उसको आगे नहीं करेगा। तो कभी दूसरों की नेकी पे भरोसा ना कीजिए, ख़ुद नेक बने तो अल्लाह ताला रास्ते बना देगा। अब दो दूसरी औरतें जो कुफर के माहौल में अपने ईमान को कैसे बचाती हैं। वदरबल्लाहु मसलल लिल्लज़ीन आमनु, और बयान करता अल्लाह एक मिसाल ईमान वालों के लिए। किसकी? इमरात फिरौन, फिरौन की बीवी की। नाम क्या था इनका? हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा। इस क़ालत रब इब्ने ली इंदक बैतन फिल जन्ना, जब उन्होंने कहा है मेरे रब बना दे मेरे लिए जन्नत में घर अपने ही पास। व नजनी मिन फिरौन व अमली ही व नजनी मिनल कौम ज़ालिमीन, और मुझे फिरौन और इसके अमल से बचा ले और ज़ालिम कौम से मुझको निजात दे दे। हज़रत आसिया की कहानी क्या है? बस ये कह लीजिए कि शादीशुदा औरतों के लिए रोल मॉडल है। अक्सर शादीशुदा ख़वातीन अपने शोहर का नाम लेकर नेकियों से रुकती हैं और गुनाह करती हैं, और ख़ास तौर पे प्लकिंग हमारे शोहर नहीं पसंद करते, और बेपर्दगी उनको अच्छा नहीं लगता। और शोहर बेचारे, अल्लाह कहते हैं कि आसिया को जब इस्लाम नज़र आ गया और उसके दिल ने ये मान लिया कि यह सच है, तो उसने शोहर की भी परवाह नहीं की। फिरौन ने उनको सूली पर चढ़ाया, तख्ते दार पर उन्होंने ये दुआ मांगी थी कि रब इब्न लींदा का बैतन फिल जन्ना। आज के दौर में देखिए तो वो मलका थी, फर्स्ट लेडी थी, और उस दौर की सुपर पावर की फ़र्स्ट लेडी होना कितनी ऑनर थी। सब छोड़ के तख्त से उठ के तख्ते पे चली गई, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए जन्नत से कहते हैं कि दरवाज़ा खोलकर दिखा दिया जिस महल में उसने जाना था। और अब भी बहुत सारी रिवायात हैं कि उनको वहाँ जाके क्या कुछ मिलने वाला है। अल्लाह अजर ज़ाया नहीं करता। इसी तरह अनमेरिड कुंवारी बच्चियों के लिए एक और मिसाल। व मरियम इब्नति इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फनफख ना फ़ीह मिरूहिना व सद्दकत बि कलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल देता है, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी, फिर हमने इसके अंदर अपनी तरफ से रूह फूंक दी और इसने अपने रब के इरशादात और इसकी किताबों की तस्दीक की और वो थी फरमा बरदारों में से। हज़रत मरियम के बारे में सब पढ़ते हैं, जानते हैं। हज़रत ईसा की माँ थीं, इमरान की बेटी थीं। कुंवारी बच्ची के लिए इज़्ज़त बड़ी अहम चीज़ है। यहूद ने उन पर इल्ज़ाम लगाया, उसी की तर्दीद जहाँ होती है। खुलासा क्या है? आपके मेरे लिए कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बच्चों की तरबियत कीजिए और नेक शोहरों का नाम लेकर बुराइयाँ ना कीजिए, और बुरे शोहरों का नाम लेकर दीन से ना रुकिए। आपका मेरा अपना अमल हमेशा याद रखिए कि हमें दूसरी तरफ लेकर जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें दूर से भी आग ना दिखाए और इस आग को हम पीछे पीछे रखें, यानी हमारी नस्लों में से भी कोई इस आग को ना देखे। चेकलिस्ट को थोड़ा सा एक नज़र गो थ्रू कर लीजिए। करना क्या है इस लेसन को पढ़ के? घर वालों को और ख़ुद को आग से बचाना है। कैसे बचाना है इसके अगर आप पॉइंट्स देखें तो, घर वालों को आग से बचाने के लिए जो आयात कुरान में थी, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, इस आग पर नहायत सख्त गिर और तुंदखू फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म दिया जाता है उसको बजा लाते हैं। घर वालों को बचाने से इनकार करने वालों से कहा जाएगा, आज माजरतें पेश ना करो, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाता है जैसे तुम अमल करोगे। ये मेन पॉइंट्स हैं सबक के। फिर अल्लाह ताला से खालिस तौबा करो, चार बातें हैं इसमें। ईमान वालों से अल्लाह ताला का मुतालबा, खालिस तौबा करो, तौबा से अल्लाह तुम्हारी बुराइयाँ दूर करेगा, तौबा से अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतों में दाखिल करेगा, तौबा से अल्लाह ताला रुसवाइयों से बचा लेगा। तीसरी चीज़ थी हमारा नूर मुकम्मल करते, यानी रब्बना अतमिम लना नूरना। क़यामत के दिन तौबा करने वालों का नूर इनके आगे और इनके दाएं जाने दौड़ रहा होगा। ईमान वाले कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमसे दरगुजर फरमा। चौथा पॉइंट था जिहाद करो कुफार और मुनाफिकीन के साथ। कुफार और मुनाफिकीन से सख्ती से पेश आओ और काफिरों और मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नुम है। और पांचवा नुक्ता क्या है, इनकार करने वालों के लिए दो घरानों की मिसालें। नूह और लूत की बीवियों की मिसाल, दोनों ने अपने शौहरों से खयानत की। अल्लाह के मुकाबले में शौहर नबी होने के बावजूद इनके किसी काम ना सके। दोनों से कह दिया गया कि जाओ आग में जाने वालों के साथ तुम भी चले जाओ। और छठा पॉइंट क्या है, अहले ईमान के लिए दो खवातीन की मिसाल। फिरौन की बीवी, इसने दुआ की कि रब मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, मुझे फिरौन और इसके अमल से बचा, जालिम कौम से मुझको निजात दे। और इमरान की बेटी मरियम, इन्होंने अपनी शर्मगाह की हिफाज़त की, अपने रब के इरशादात और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो इताअत गुज़ार लोगों में से थी। करना क्या है, अपना जायज़ा लेना है हमने। क्या सवाल है, पांच सवाल है जायज़े के। क्या मैं घर वालों को आग से बचाना चाहती हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला से खालिस तौबा करती हूँ? क्या मुझे क़यामत के दिन के नूर का यकीन है? क्या मैं नूर के लिए दुआएं करती हूँ? क्या मैं अपने रब के इरशादात और किताब की तस्दीक करती हूँ? करें क्या, कैसे बचाएं खुद को और घर वालों को? कुरान सीखना और घर वालों को सिखाना और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना। तो ये था हमारे लिए घर बचाने का पहला नुस्खा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए और हम दुनिया में ही अपनी गलतियों की इसलाह करते हुए आगे पहुँचें। आप यकीनन इस मौजू पे सुनते वक्त बहुत कुछ सोच रहे होंगे ना, तो अपनी इसलाह की खातिर दूसरों को बताने के लिए अच्छी बातों को एक जगह जमा करें, ख़ुद से कोई नियत करें, कोई कमिटमेंट करें और फिर उस पर अमल की कोशिश करें। एक दूसरे के साथ मिल के इरादे करें कि हमने किस तरह अपने अपने घरों में दीन को लेकर आना है। अल्लाह ताला मदद फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।